क्या बतला रहा है? गुरु परंपरा के लिए नारद जी आए। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने पूछा नारद जी ने, तुमने समस्त शास्त्रों का प्रणयन किया, प्रकाश किया, वेदों का भी भाग किया चारों से, उपनिषदों को भी प्रकाश किया, महाभारत इत्यादि का भी तुमने प्रकाश किया, जिसमें स्त्री शूद्र अंतर वर्णों का भी अधिकार है, इसमें महाभारत में उसी के अंदर में गीता है, तो गीता में सबका अधिकार है, ये सब कुछ आपने किए, धर्म की परिभाषा आपने दी, सब कुछ दिया, किंतु आप खिन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूं, मैं समझ नहीं रहा जैसे क्यों मैं दुखी, मेरी पूर्णता नहीं हुई, मालूम होता है कि कुछ बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया मुझे मालूम नहीं, शिष्य इस चीज को नहीं जान सकता है कि हमारे भजन में क्या त्रुटि है, हमको क्या करना चाहिए यह नहीं शिष्य जानता, कौन बतलाएगा? गुरु, ये गुरु बतलाते हैं कि क्या तुम्हारे भजन में कमी है, कैसे ये पूर्णता हो सकती है, और जब जब जरूरत है तब तक इंजेक्शन देंगे, इस तरह से धीरे धीरे उसे परिपक्व करके उस प्रेम फल का अधिकारी बनाएंगे। तो इसलिए नारद जी जब पूछा तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है जैसे मैं क्यों ऐसा दुखी हूं, अपूर्ण काम हूं। उन्होंने कहा जैसे आपने कृष्ण का लीला चरित्र नहीं लिखा जैसा लिखना चाहिए था, महाभारत में भी, पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी कृष्ण की कथाएं हैं, किंतु गोपियों का चरित्र वैसा नहीं है, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में भी कुछ कुछ है, किंतु ऐसे रसमय कथा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं आपने कहीं नहीं लिखा, लोग कहते हैं कहीं नारायण भगवान है, उन्हीं से ही, नारायण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, नारायण का ही एक रूप कृष्ण है, बलदेव है, वहां से आते हैं, जब उनकी दास यहां पर खिचड़ी केस हो गए, कुछ सफेद और कुछ काले दाढ़ी में भी, तो उन्होंने सिर से दो केस उखाड़े, एक काला और एक, तो ये काला हो गए कृष्ण और सफेद हो गए बलदेव जी, उनका अंश है। और सभी पुराणों में जैसे लिखा है वो गर्भदशाई विष्णु के अवतार ये कृष्ण बलदेव हैं, ऐसा भी लिखा, कहीं और भी कुछ लिखा, कहीं लिखा ये शंकरसन के ये अवतार हैं, कहीं लिखा जे ये जो नारायण हैं कर्णाधिशाई में शयन करने उनके ये अंश हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा जी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कृष्ण की जो दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक ऐश्वर्यमयी एक माधुर्यमयी, अपने ऐश्वर्य के रूप में कृष्ण की भगवत्ता को प्रमाणित किया, जो चीज अलौकिक है जो कोई नहीं कर सकता उसको जो करता है उसको कहते हैं भगवान, विशेष करके ऐश्वर्य समग्रस्य दिव्य जस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्ना भवति मनः, छह भव जिसमें हो उसको कहते हैं भगवान, भव से वान भगवान, गाड़ी वान गाड़ी वान, एक का से एक के मान, ऊंटवान घोड़ेवान इत्यादि सब होता है, ऐसे ही छह भव जिनमें हो, छह भव भग क्या, ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जिनके अंदर हो, ब्रह्मा जी में भी ऐश्वर्य है कुछ, शंकर जी में भी है, नारायण में परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य, कृष्ण में भी ऐश्वर्य है, राम में भी ऐश्वर्य है, किंतु समग्रस्य ये समग्र नहीं है, समग्र में किसमें है, नंदनंदन में, यशोदानंदन राधा कांत में ये समग्र ऐश्वर्य है। बैठ जाओ तुम लोग भी,
तुम लोग और आगे,
समग्र ये वीर्य जितना बल है ना, बलदेव का भी बल जिनसे निकलता है, राम इत्यादि का बल, जिनमें है, वो सब मूल बल जो समग्र बल है उनमें है। बलदेव जी को पूर्ण बलवान तो कह सकते हैं किंतु पूर्णतम नहीं कह सकते। पूर्णतम कहाँ है? वो कृष्ण में ही है। इसलिए समग्र में से यहां पर पूर्णतम अर्थ है। सब प्रकार का बल उनमें है। ऐश्वर्य स समग्र से वीर्य जस, कृष्ण का इतना जस है। कैसा जस है? सबसे बड़ा जस कौन सा है? राधा रानी जी के पैरों को पलोटना, यह सबसे बड़ा रस। इससे बढ़कर के और कोई जस नहीं है। इससे कोई बड़ा जस नहीं हो सकता। गोवर्धन उठाया, कंस को मारा, जरासंध को मारा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को, रावण कुंभकर्ण को मारा, शबरी को उद्धारा, ये सब तो जस हैं, किंतु ये परिपूर्णतम यश नहीं है। इसलिए परिपूर्णतम जस कहाँ है? रास लीला में है, गोपियों के को प्रसन्न करने में। राधा जी आगे आगे जा रही हैं मान करके, और पीछे पीछे कृष्ण उनको मनाने के लिए श्रृंगार वट में प्रवेश कर रहे हैं, और जब मिले तो सेवा कुंज में उनकी सेवा कर रहे हैं। ये जो समग्र जस है, बल है, वीर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है। ज्ञान कैसा? नारायण में पूर्णतम ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है। द्वारकाधीश में पूर्ण है, और उससे पूर्णतर है मथुरेश कृष्ण में, और उससे भी पूर्ण है पूर्णतम श्री कृष्ण में। तब जस का जैसे जी खिलाया कि जस के बाद में श्री रूप, कृष्ण का नारायण का बहुत सुंदर है। अरे उनकी तो बात छोड़ दो, गर्भोदशाई संताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, कितने सुंदर ये रूप है। किंतु जब ये नारायण के पास में आते हैं कर्णाब्धिशाई विष्णु के, तो उनका रूप जरा छोटा पड़ जाता है, हाथ जोड़ करके उनके सामने उनमें मिल जाते हैं। और ये यदि संकर्षण को देखा, कौन सा संकर्षण? महासंकर्षण देख करके स्तुति स्तव करते उनके रूप की महिमा वर्णन कर लेते। और वो जब नारायण का रूप देखते हैं तो वो भी मुग्ध हो, नारायण कृष्ण का द्वारकाधीश का रूप देखते ही अपने रूप की गरिमा को छोड़ देते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सबसे रूप किसका है अधिक? कृष्ण का। कृष्ण से भी दासियों के जो कृष्ण हैं उनसे सख का जो कृष्ण है सखा, वो और सुंदर है। और जसोदा मैया की गोद में जो पलते हैं वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। उसे और गोपियों के साथ में रहने वाले चंद्राव की प्रभृति के साथ में रहने वाले विराजमान वो पूर्ण है, पूर्णतम है। और पूर्णतम से भी महा महा परिपूर्णतम कौन है? जो राधा जी बाएं में खड़ी हैं, जिनकी मन मथ वो कृष्ण है। इसलिए उनका रूप भी यहीं पर परिसमाप्ति होती है, सबसे श्रेष्ठ रूप। इसी तरह से ज्ञान वैराग्य, ज्ञान कब उनका है? ज्ञान नारायण लोगों को ज्ञान देते हैं, नर नारायण इत्यादि द्वारका भी उद्धव को ज्ञान देते हैं, ये सर्वोत्तम ज्ञान है। और उद्धव को कहते हैं कि तुम जाकर के ब्रज में हमारा ये ज्ञान दो, तो वो कैसा है? पूर्ण सर। और जब कृष्ण स्वयं वहां पर जो ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र में गोपियों को, वो पूर्णतम ज्ञान है, पूर्णतम ज्ञान। किंतु जब गोपियां कृष्ण को ज्ञान दे रही हैं कहां पर? राजपंच अध्याय के बाद में, उसमें कृष्ण कहते हैं कि घर लौट जाओ। उस समय उसके बदले में अथवा बतलाओ तो कृष्ण को पूछ रही है गोपिया, कृष्ण को खड़ा कर दिया है छात्र के रूप में और पूछ रही है गोपिया बतलाओ तो। प्रेम के बदले जो प्रेम करता है, आज जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है, आज जो प्रेम करने पर भी किसी से प्रेम नहीं करता है, नहीं? तो बतलाओ इसमें कौन से है, इसके संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है। इसके बाद में जो गोपियां उसका उत्तर दिया पीछे से कृष्ण के उत्तर के बाद में कृष्ण को, ये सब जो है ये ज्ञान विज्ञान संबंध में तो उसकी शेष सीमा है। घर लौट जाओ उस समय कृष्ण को गोपियों ने जो उपदेश दिया कृष्ण इसका उत्तर नहीं दे सके। इसी सब से कृष्ण कहा न पारे हम निर्बल। किसी शास्त्र में यह सब प्रकाशित है, यदि भागवत नहीं प्रकाश होते, कृष्ण स्वयं भागवत के रूप में नहीं आते और नारद जी ये व्यास को शिक्षा नहीं देते और समाधि में ये उनको दर्शन नहीं होता, तो जगत इसके लिए वंचित हो जाता। भाई सो मत, सोने के लिए नहीं रह जाता, ये सब अधूरी चीजें रह जाती। रात में जो लीलाएं हुई विलास उनका हुआ, ये भ्रमर गीत का इत्यादि जो संदेश है यह रही जाता, जगत उसको नहीं प्राप्त होता, यह गोलोक वृंदावन के उसी बक्से में बंद रह जाता। इसलिए इसको जगत में देने के लिए किन के लिए, जो रागानुगा साधक हैं दूसरों लोगों के लिए नहीं, जिनकी जिनको लोभ हो गया है, जो कृष्ण ने जो लीलाएं की उनको लोभ जिनको हुआ, उन लोगों को देने के लिए लीला हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंदी सत्सुरम सत्सुरम, ये भक्त हैं कौन रागानुगा में जिनको लोभ हो गया है, जो मैं मुझको उसी तरह से गोपियों जैसी सखाओं जैसी मैया जैसी हमको कृष्ण के प्रति प्रीति हो, ऐसे लोगों को वो कैसे अब मिलेगा। आज से तो 5000 वर्ष हो गया, ऐसा समय आएगा जैसे 10-20 लाख वर्ष हो जाएगा, ब्रह्मा की आयु ब्रह्मा का एक दिन भी बीत सकता है, एक दिन के बाद में फिर वो लीला आती है कितने 1000 चतुर्दिवी के बाद में आएगी। तो इसके बीच में जो रसिक भक्त होना चाहेंगे, राधा जी का वह भाव लेना चाहेंगे गोपियों का, उनको कैसे रखा जाएगा, कैसे ये मिलेगा, उसके लिए हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंदी सुसर्म, इसी को आदि मध्य और अंत में ये दिया गया। यही सर्ववेदांत सारम, यही सर्ववेदांत सार है, सर्ववेदांत सारम श्रीमद्भागवतम इष्यते तद रसामि तृप्तस्य न अन्यत्र स्वादरति। कहीं इसको भागवत जो सुनेगा, हमारे गोस्वामियों का जो ग्रंथ सुनेगा, कभी भी उसको दूसरे कोई कथा सुनने की लालसा नहीं होगी, उठ करके चला जाएगा भले ही अवज्ञा हो, उनको तो ये सब भागवत की कथाएं चाहिए। यही समस्त वेदांत का सार है। इसी को अमृतानंद हरि लीला कथा ब्राता अमृत, हरि लीला कथा एव एव अमृतम, और ये जो हरि लीला कथा है जो यही प्रयोजन है, यही है प्रेमा भक्ति गोपियों के कृष्ण के प्रति, यही है प्रयोजन भागवत का, इसीलिए आए हैं और चीजों के लिए नहीं। और तो सब दूसरे दूसरे शास्त्रों में महाभारत में वेदों में उपनिषदों में ये सब मिल जाएगा, किंतु ये भागवत कहते हैं ये कृष्ण का स्वरूप है राधा जी का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि यही कैवल्यई का प्रयोजन हमने कल बतलाया था कि वहां पर सब लोगों ने बतलाया, कैवल्य दो प्रकार का, एक भक्ति कैवल्य जो कि श्रीमद् भागवत में राज पंचायत अध्याय में गोपियों के लीला चरित्र में आया, यह है केवल भक्ति, यही है केवल प्रेम, यही है प्रयोजन। और एक दूसरा है वंचितों के लिए, जो वंचित है इस रस कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी विशेष करके कैवल्यवादी मुक्तिवादी शंकरवादी, उनके समझ में नहीं आता, उनके लिए मुक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। तब उन्होंने भागवत ने मोहिनी का रूप धारण करके उनको छल दिया और उनको अमृत परोस दिया। ये मन ये रूप के लालसा से कुछ कामुक थे, इसलिए उनको मुक्ति दे दिया। सुन रही है आखिर सो रही है, हम उठा करके खड़े कर देंगे बेंच पर, यदि कोई सोया, बतलाओ। हाँ, असुर लोग जो थे वो क्या चाहते थे? असुर लोग विषयों का भोग चाहते थे, सुरा सुंदरी इत्यादि चाहते थे, इसलिए उनको धन की जरूरत है। और मरे नहीं उसका सब समय हम लोग भोग करते हैं। और देवता लोगों को अमृत किस लिए प्रयोजन है? कृष्ण की सेवा की। यहां पर सुर शब्द का तात्पर्य बतलाया, जो वही सत एव सुरम। इस श्लोक में सत माने रसिक भाव, यही सुर के लिए है। मोहिनी जी भागवत हैं, उनके तरफ में थोड़ी सी कामुकता भरी दृष्टि दिखला करके ठग करके उनको मुक्ति, जाओ कैवल ले प्रयोजन, ये केवल ले लो। क्या केवल? केवल मुक्ति सब समय के लिए ले लो और तुम पत्थर बन जाओ। और दूसरी तरफ में इन संतों को जो रसिक भावुक हैं, निगम कल्प तरूर गलितम सुख मुखाम अमृत दर्शन युतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका, ये श्रीमद भागवत जी की मोहिनी की ये कृपा है। एक ही लीला से भगवान असुरों को ठगते हैं और भक्तों को प्रेमानंद प्रदान करते हैं, इसलिए ये भागवत का अवतरण है। यही श्रीमद भागवत का मूल प्रयोजन है। हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए एक से लेकर के नौवें स्कंद तक संक्षिप्त में हम लोग वर्णन करेंगे। खूब संक्षिप्त में कथाओं का स्मरण दिलाते चले जाएंगे और दसम स्कंध हम लोग चेष्टा करेंगे कि सात दिन हो, तीन दिन हो, यह सब लीला। इसमें भी हरि लीला की पोषक कथाएं हैं, वैराग्याख्यान संयुतम आदि मध्यावसानेशु वैराग्याख्यानम संयुतम हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंद सत्य। वैराग्य की भी जरूरत है, ऐसा मत सोचिए कि वैराग्य की जरूरत नहीं है। विषयों में वैराग्य और भक्ति में राग अनुराग होना चाहिए। यदि विषयों में वैराग्य नहीं होगा तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, भोगों की स्पृहा रहेगी, इसलिए इनको छोड़ करके तब इसमें प्रवेश करें तब यह होगा। इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में अपने अंतर्ध्यान के बाद में सुखदेव गोस्वामी को रखा, जो परीक्षित महाराज की सभा में कितने 88,000 ऋषि कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त सभी लोग उसमें थे। उसमें से जो ये बांट रहे हैं दूसरों लोगों के लिए कहा, ऐश्वर्य पूर्ण वसुदेव नंदन कृष्ण ही कृष्ण है, भगवान है। और भक्तों के लिए क्या कहा? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, उनके लिए कहा। नंद गोप कुमार आय, उनके लिए कहा। नंद की पशुपांग गजाय, ये सब किसके लिए कहा? बुझे रसिक जन ना बुझे मूढ़, मूढ़ ना क्या, ना बुझे मूढ़। इसलिए भागवत ने परोक्षवाद, वयम कृष्ण ही परोक्षवाद है, उनको परोक्षवाद मम प्रियम परोक्षवादो ये श्रीमद भागवतम आज परोक्ष ऋषा यह परोक्षवादो ऋषा, ऋषा मैंने कौन? व्यास जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये परोक्षवाद के हैं। कैसे? एक उदाहरण द्वारा समझो। वृंदावन में मताना कोई, यदि लाल साहेब स्त्री पुत्र परिवार पति के साथ में रहे, मेरा भंगी त्रय ये है परोक्षवाद। वृंदावन में मत आना, वृंदावन में आना तो सेवा कुंज के पास में जो केसी घाट है मत जाना, वहां पर खबरदार मत आना। मथुरा में जाना, चला जाना जहां देवकी नंदन है। और यदि वृंदावन में आ भी गया तो केसी घाट के पास में एक गोविंद जी का मंदिर है, उस मंदिर को देख करके प्रणाम करके चला जाना, भीतर में मत जाना। और यदि भीतर में चला गया तो गोविंद बंसी लिए हुए त्रिभंग रूप में खड़े हुए मंद मंद मुस्कान के साथ में बंसी बजा रहे हैं, यदि देखा और सुना तो फिर घर में लौट करके नहीं जाना है। यह क्या है? परोक्षवाद। इसी तरह से परोक्षवाद ऐसा लिखा कैवल्यिक प्रयोजनम, यह परोक्षवाद है। असल में है क्या, प्रेम, कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम, राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, यही प्रयोजन है। किंतु उसको दिखलाया उल्टे रूप में, जो कि ये लोग न समझ सके। जो मूर्ख लोग हैं वो काट चूसेंगे लोला, लोला तो बच्चों को खिलाने के लिए खिलौना होता है ना, तो वो झुनझुन बजता है, कभी मुख में देते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी उधर देखते हैं। और जो अच्छे बुद्धिमान लड़के हैं वो क्या करेंगे, बच्चे उसको फेंक करके क्या क्या करेंगे, जब रोने लग जाएंगे तो मैया आकर के दूध देगी। तो इसी तरह से इनको लोला दे दिया गया है। और जो बुद्धिमान है, रसिक है, भावुक है, ये इन चीजों को पढ़े। इसलिए हम लोग 3 दिन में या 4 दिन में हम लोग और स्कंदों को समाप्त करेंगे। अधिकांश रूप में कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से हम लोग वर्णन करेंगे। हम लोगों का यही अभिप्राय है, जिससे कि लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति हो। आप लोग इससे वंचित मत होंगे। किंतु एक बात याद रखेंगे, जो लोग शुद्ध गुरु वैष्णव की बात नहीं मानते हैं और उसके अनुसार में नहीं चलते, उनको यह कदापि कभी नहीं मिलेगा। वो लोला उनके हाथ में पड़ेगा और मुक्ति हाथ में पड़ जाएगी, ये समझ रखो। जो उनकी बात नहीं चलेंगे वो भी नहीं मिलेगा, लोला भी नहीं मिलेगा, केवल कष्ट ही कष्ट हाथ रहेगा, ये समझ रखो। अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अब तब ये भागवत सुनो, सर्वस्व उनके चरणों में दे करके सुनो, तब ये मिलेगा। ऐसे नहीं, वो लिखा है ना, कितने कोटि स्वपि महामुने, क्या नारायण परायण, नारायण परायण सिद्धा नाम अपि जत्ता नाम, कल वहां पर उल्टा बोल रहा था। कल एक पंडित था ना, अंत में जो बोला वो चोटी वाला धुरंधर बिगड़ेल पंडित जी उसका नाम, तो वो कह रहा था वो श्लोक क्या है, सिद्धा नाम अपि मुक्त है। एमन मूर्ख सब हैं, किसी भी भागवत में ऐसा नहीं। हमारी इच्छा थी कि बोले, फिर देखिए जैसे ये सबके उसके सामने बड़ी बेइज्जत होनी पड़ेगी, इसलिए हमने नहीं बोला। तो वो उल्टा पुल्टा करते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर उधर का करता है। जिनको स्वयं कृष्ण एकदम आराध्य नहीं है, अनन्य कृष्ण में भक्ति नहीं है, उनके मुख से 1000 पंडित होने पर कभी भागवत मत सुनो। यदि तुम लोग प्रेम चाहते हो, ये बात ठीक रख लो, 1,00,000 पंडित हो, विद्वान हो, तरह तरह के उसके व्यक्तिगत एक का 50 अर्थ करने वाले हो, मत सुनने जाओ। उसे न सुनना बल्कि बहुत तरह से अच्छा है, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। किंतु यदि सुनना हो तो जिनको कृष्ण में अनन्य भक्ति है, गुरु से अनन्य भक्ति उसको मिल रही है, और विशेष करके इधर में लोभ थोड़ा सा जिसको है, उससे भागवत सुनो। वो है ना, सुखो व्यक्ति, व्यासो व्यक्ति, अहम वेदनी, सुखो व्यक्ति, व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति व्यास, भक्त्या भागवतम ग्रह। जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान, वैष्णव नहीं है कौन, रसिक और भावुक व्यक्ति हो। यदि उसको कुछ भी नहीं आता है तभी भागवत उसी से सुनो। यदि जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है, और जो कि जिसको इस घर के तरफ में लोभ उत्पन्न हो गया है कृष्ण की इन लीला कथाओं की, उनसे सुनो। भले वो विद्वान नहीं है, कोई बात नहीं है, वो सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा और इधर में ले आएगा। किंतु 1,000 विद्वान होने पर भी जिनकी निष्ठा कृष्ण में नहीं है, एकांतिक भक्त नहीं है, 1,00,000 विद्वान हो, चाहे 1,00,000 प्रकार का अर्थ करते हैं, उनको दूर से प्रणाम कर लो, अकेले अकेले हरि नाम करो, बल्कि उससे अच्छा है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान, रसिक वैष्णव स्थान। तो इस तरह से हम लोग अब आरंभ करेंगे। मैंने बहुत अधिक बोल दिया, इतना बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी बोल दिया करूंगा, कभी कभी। और ये आपको अभी सुनाएंगे 3 घंटा इधर 8 से हृदय में, हृदय स्थल श्री सेवा कुंज में, जहाँ पर कि प्रेम गली, दान गली, मान गली, ये सब मिली हुई हैं। इस रूप सनातन श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में श्रीमद् भागवत कथामृत हो रहा है। 11-12 दिन का प्रोग्राम था, 12 दिन में 12 स्कंद रखा गया। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, इसी बीच में हम गौड़िया वेदांत समिति के आचार्य और सभापति हमारे सत्तीर्थ वर्ष परम पूज्य बात से श्रीमद् भक्ति वेदांत भवन महाराज जी उपस्थित हुए हैं। आने की तो बात थी जन्माष्टमी के समय में ही, किंतु बहुत भीड़ भाड़ रहती है और इस वर्ष तो मथुरा ने समस्त भारतवर्ष या विश्व का चित्त आकर्षण कर लिया, वो कोई यज्ञ हो रहा था, इसलिए उस समय आना जाना तो बहुत कठिन था। तो हम लोगों का ये श्रीमद् भागवत कथामृत चल रहा है, महाराज जी भागवत के पंडित व्यक्ति हैं, दार्शनिक भी हैं, दार्शनिक विद्वान भी हैं। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि श्रीमद् भागवत के संबंध में जो हम लोगों के लिए शिक्षाएं हैं, जिसमें हम लोग भागवत में प्रवेश कर सकें और श्री चैतन्य महापुरुष के दृष्टिकोण से हम लोग भागवत में प्रवेश करें और उसमें जो शिक्षाएं हैं संक्षेप में हम लोगों को कुछ उपदेश प्रदान करें, यही मैं इनसे निवेदन करता हूं। अभी आप लोग इनसे श्रीमद् भागवत के विचार के संबंध में श्रवण करें। भागवत की जो कथा हो रही है उसमें आप लोगों ने प्रारंभिक कथाएं सुनी, मैंने प्रारंभ दिवस में ही मंगलाचरण के रूप में थोड़ा सा कुछ निवेदन किया था। उसमें मैंने कहा था हरी लीला कथा प्राता अमृतानंद सत्पुरम और सर्वेदांत सारम ब्रह्मैकात्म लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। पहले का श्लोक हमने प्रारंभ का बतलाया था, धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मात्राणां सदा। पहला वाला से चला गया मंगलाचरण में जन्मादस्य जतः, उन्होंने प्रणाम किया, किंतु उसी श्लोक में सारा भागवत भर करके रख दिया एक श्लोक में, पहले श्लोक में वंदना के समय में ही उसी की व्याख्या समझिए। ये समस्त सारा भागवत प्रथम श्लोक की व्याख्या है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि जो गायत्री है ओंकार से ये सब वेद निकले हैं, ये ब्रह्मस्वरूप है, उन्हीं से ये गायत्री निकली, उनकी व्याख्या के रूप में सूत्र के रूप में। उसका वेद व्यास जी ने स्वयं वेदांत इत्यादि का ये अर्थ स्वरूप श्रीमद् भागवत का उसका भी सार बतलाया इसमें श्रीमद् भागवत। तो हमने पहले ही बतलाया था जन्मादस्य जतः, बहुत से अर्थ बतलाए गए हमारे जीव गोस्वामी ने, हमारे सनातन गोस्वामी पूज्यपाद जीव गोस्वामी ने, और उन्हीं का प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करके हमारे श्री विश्वनाथ जगवती ठाकुर जी ने बहुत तरह की व्याख्याएं की हैं, जिसमें प्रधान जन्मादस्य जतः में जन्म आदि जस्य
माने जिससे ये जन्म हुआ उसको पहले तब बतलाया कृष्ण अर्थ में प्रयोग किया, और सत्यम परम धीमहि, वह कृष्ण ही सत्यम परम परम सत्यम धीमहि, वो सत्य स्वरूप बतलाया। दूसरा एक प्रधान अर्थ उसका ये निकाला है, और उसी के अनुसार ने सारी उस श्लोक के सारे जितने हैं चरण उनको उसी में लगाया एक एक अर्थ, अन्य व्यतिरेक रूप में उन्हीं से ये सब कुछ हैं। वो स्वराट हैं तेने ब्रह्म हृदय जद आद कवे वो यंत जत सूर्य ते जो बार मदाम जत्र विनिमयो तिसर्गो अमृषा धामना सेन निरक्तकोक्तम सत्यम परम दिवम। एक एक शब्द का उसी के ऊपर में ले गए उस कृष्ण को, वही कृष्ण ही सत्यम परम धीमहि, उस कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ उनके लोक के साथ में, ग्लोक वृंदावन के साथ में। फिर दूसरा उन्होंने बतलाया कृष्ण ही नहीं राधा और कृष्ण जुगल सत्यम परम धीमहि, और उसने बतलाया तेज तेजो बार मृदान, उसमें तेज शब्द की व्याख्या की ऊर्जा